एक इस्माइल का और एक इस्माइल की मां का, दो जुमले, इस्माइल का और इस्माइल की मां का जुमला। इस्माइल का जुमला कुरान में आया 37वां सूरह ज़ारियात, मादर इस्माइल का जुमला रिवायात में आया। यहां सकलन जमा हो गए, किताबुल्लाह में भी यह जुमला आया, इतरतीय है बेटी में भी यह जुमला आया, मां का जुमला और बेटे का जुमला। बेटा तो फिर भी नबी मासूम था, नबी पैदाइश में नबी होता, दुनिया में आने के बाद कमालात हासिल करके नबी नहीं बनता, लेकिन हाजिरा वो तो नबी नहीं थी ना। दोनों ने एक जुमला कहा है और ये उसूल बना हर मोमिन और मोमिना के लिए। मौलाना आपको मालूम है, लोग कहते हैं मुझसे, आपको मालूम है ये 21वीं सदी? हाँ हाँ हमें मालूम। आपको पता है कि दुनिया चांद के बाद मरीख पे पहुंच गई? मैंने कहा मुझे तो उससे भी ज्यादा मालूम है कि मरीख से भी आगे पहुंच गई। मौलाना आपको पता है मगरबी ताकतें कितनी तरक्की कर रही? मैंने कहा मैं साल में 10 दफा वहां जाता हूं, 10 महीने से तो रहता भी वहीं पर, 10 साल से। मौलाना फिर भी आप मेंबर पे ऐसी उठपटांग गुफ्तगू करते? औरत को हिजाब करना, मिक्स गैदरिंग हराम है, बर्थडे पार्टी में अगर जहां पे बेहिजाबी आ गई, जिस बच्चे के लिए तुम सालगिरह कर रहे, इससे बढ़कर उसकी बद्दुआ कोई हो नहीं सकती। देखिए अगर आदमी इमाम की बातों पे गौर करके सोचे, ये आने वाले मेहमान, ये जो अपने साथ तोहफे लेके आ रहे हैं, हर तोहफे के अंदर एक खंजर छुपा हुआ है जो इस बच्चे के सीने में उतारा जा रहा, हम तो बड़े खुश होते, बड़ी कामयाब हमारी पार्टी रही, इतने सारे लोग आए, ऐसे कीमती तोहफे लेके आए। लेकिन जब मासूम की इतनी मशहूर हदीस कि हमारी कौम का वो आदमी जो दस्तखत भी नहीं कर सकता, खाली अंगूठा लगाता, वो भी जानता कि इमाम ने फरमाया जहां जिस घर में कुत्ता हो वहां रहमत नहीं आती, जहां बेहिजाब औरत हो वहां रहमत नहीं आती। हमने बच्चे की सालगिरह क्यों की? अल्लाह से रहमत चाहते हैं ना, इस बच्चे का नसीबा अच्छा हो, ये बच्चे को लंबी उम्र मिले, ये हर बीमारी और परेशानी से महफूज रहे और बुला इस तरह रहे कि रहमत के फरिश्ते जो घर में थे पहले उनको धक्का दे के निकाला और शैतान के नुमाइंदे को बुलाया, बड़े खुश हो रहे हैं, हम खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारते हैं। बाद में कहते मौलाना मेरा बेटा तो इतना मैंने नमाज शब और कुरान और मदरसा और संडे स्कूल में पढ़ाया और बिगड़ गया। आपने बिगाड़ा है, ये जुमले की तशरीह इस वक्त वक्त नहीं है मेरे पास, लेकिन मजमा समझ भी रहा है, मौका मिला तो बाद में बताया जाएगा। वो भी साइंस कहती कि बच्चा मां के पेट से जो आवाज सुनता है इसके असरात मरते दम तक उसके साथ चलते। वो जिस माहौल में आपने उसकी पार्टी की वो माहौल आपने देखा, वहां कहीं पे दूर दूर तक इमामत की झलक नजर आ रही थी। सिर्फ छोटी सी बच्ची 6 साल से भी कम की महफिल में लाई गई और लोगों ने बारी बारी गोद में बिठा के शफकत के साथ बोसा दिया, 8वां इमाम उठ के चला गया। ऐसी महफिल में मैं नहीं बैठूंगा जहां से अल्लाह नाराज। ये वाकयात का एक सिलसिला, मगर बड़े खुश होते और बाद में कंप्लेन करते, मौलाना कोई दुआ बताइए, मौलाना कोई वजीफा बताइए, मौलाना कोई अमल बताइए। ये सारी चीजें सही हैं, मगर जब मुनासिब मौका था, अब मैं शादी की तरफ तो जा ही नहीं रहा, आज यही हमारी कौम है, जहां आज से 25 साल पहले भी मैंने निकाह पढ़े, अब 50 साल पहले की शादियां भी मैंने सुनी। वाकान लड़की पे या बीवी पे ऐसे जुल्म के इंसानियत शर्मा जाए। हमने कहा 40 साल पहले, 35 साल पहले कि भाई ऐसी हालत में तो इस्लाम इजाजत देता तलाक ले लो, लड़की कहां उठी? कहा मौलाना शौहर को राजी कीजिए, वो जो जुल्म भी करे मुझे तलाक ना दे, मरना कबूल है मगर ये जिल्लत और रिसवाई कबूल नहीं। और आज अब मैं तो पाकिस्तान में बहुत कम रहता हूं और जब भी आता हूं तो इत्तेफाक से अय्याम अल्लाह होते हैं, लेकिन जो मेरे दोस्त मेरे साथी हौजा इल्मिया में मेरे शागिर्द कहते, ऐसा माहौल बन गया कि जब कोई आता तो हमारा दिल चाहता है, आता है कि मौलाना वो अगले महीने मेरी बेटी का निकाह, दिल चाहता है उससे कह दी भाई तुम्हें भी सहमत होगी और हमें भी सहमत होगी बार बार तुम्हारे आने से, दोनों तारीखें साथ बता दो, निकाह की तारीख भी और तलाक की तारीख भी, इसलिए कि एक आध हफ्ते, एक आध महीने, 15 दिन, 2 महीने के अंदर तो तलाक होने ही होने वाली। फिर आओगे हमारे पास के मौलाना, उसी की तलाक पढ़ दीजिए, एडवांस में दोनों तारीखें लेके चले। माहौल ऐसा बना, अभी बड़ी तेजी के साथ जो हमारी माशरती जिंदगी टूट रही, इसमें से कोई चीज मेरे असल मौजू सब्र सज्जादिया से मुख्तलिफ नहीं। और अगर जियारत वारिसा भी मेरा मौजू बना तो कोई चीज इससे हटके नहीं। बस ये क्या, अभी क्योंकि मैं वो सारा बस मंजर नहीं बता रहा आपने मौजू का, तो बात कर रब उससे नहीं मिल रहा होगा। ये शैतान आखिरी जमाने में सबसे बड़ी खराबी पैदा करेगा, बेहयाई, माशरे को बेहयाई के नाम पे लाके मारेगा। तो वो उसमें सबसे बड़ा दखल इसी बात का, शादीशुदा जिंदगी अगर आदमी की ठीक ना हो, थोड़ा बहुत इंसान के नेचर में अल्लाह ने तो नहीं रखा है, शैतान ने शायद रख दिया कि इधर उधर मुंह मारता रहता है, लेकिन अगर शादी की जिंदगी ठीक हो तो जरूरत नहीं है उसे इतने बेहयाई के कामों की जो इसलिए करना पड़ती कि शादीशुदा आदमी की जिंदगी भी एक अजाब है। और तलाक तो इतनी कसरत से होने लगी, इतनी कसरत से, हर लड़की को तलाक चाहिए, लड़की में हर लड़की के वालिदैन को तलाक चाहिए, जिसके नतीजे में इंडिया में एक खास टेक्निक वाले चूल्हे बनाए जाते हैं, जो फटते हैं तो इस तरह से कि न शौहर को नुकसान पहुंचे, ना सास को नुकसान पहुंचे, ना नंद को, सिर्फ हमेशा उसके नतीजे में बीवी मरा करती। वो कोई टेक्निक होगी, साइंस तो बड़ी तरक्की कर गई, आप कहते हैं मौलाना आपको एक मेंढक है, हमने तो चांद और मरीख देखा, होगा कोई ऐसा सिलसिला। मगर ये मैं इधर उधर थोड़ा सा जो गया, चौथे इमाम की सीरत का एक पैगाम आपको मालूम, मैं हमेशा देता हूं और इस साल भी दूंगा, अपने आप को बेहयाई के कामों से जितना बता सकते बचाओ। लेकिन मसाला यह कि बेहयाई माशरे में फैलती क्यों है, इस वजह से कि जो अल्लाह ने जायज और हलाल तरीका रखा इफ्फत और हया के तहफ्फुज का, उसी पे हमला हो गया और इसका सर कर। लेकिन मौलाना कितनी जिल्लत, आज तक हमारे खानदान में तलाक नहीं हुई, कैसे हुई? हमने तो मजलिस में, हमने तो निकाह में हदीस किसा भी पढ़वाई थी, मगर ये भी तो बताइए उससे पहले क्या पढ़वाया था, उसके बाद क्या पढ़वाया था। आधी बात बताने से क्या फायदा, हदीसे किसा से पहले जो 2 दिन पहले आपके यहाँ की मेहंदी गई थी और लड़की के यहाँ की मेहंदी आई थी, उसमें क्या पढ़ा जा रहा था? और जब मौलाना हदीसे किसा देखा पढ़ के चले गए, फिर क्या बेहूदगियां हो रही थी? तबीब को भी अगर आप आधा मसाला बताएंगे, पूरा नहीं बताएंगे, गलत दवा देगा। तो अब ये सारे मसले पैदा क्यों हो रहे हैं? इसीलिए पैदा हो रहे हैं कि आदमी पैगाम के बदले में अल्फाज में उलझ के रह गया। और जो बात मैं कह रहा था जरा सी बात फैक्ट से हटी हटी नहीं असल मौजू पर। चौथे इमाम के हालात में आप मेरी कोई भी मजलिस उठा के देख लीजिए, मजलिस तो नहीं अशरा खमसा, बेहयाई पर एक पूरी मजलिस होती, तो ये उसके लिए थोड़ी सी तैयारी थी। कल परसों 2 दिन और अभी आपके से मुलाकात होगी, यानी कम अज कम मैं तो आऊंगा, आप आए ना आए वो आपका मसला है। या अबते फल या अबते फल माँ तो उमर, ये बेटे का जुमला, ये सारी बात निकली माँ के जुमले से। मौलाना दुनिया कहां पहुंच गई, आप अब तक किसी के कायल हैं कि औरत को पूरा हिजाब करना चाहिए, पर्दे की वैसी बूबू बनना चाहिए? ऐसी वैसी मैं नहीं जानता, जैसा आपका मर्जी का है वैसा हिजाब। मौलाना दुनिया कहीं की कहीं पहुंच गई, आपकी सुई अभी वहीं अटकी कि माइकल जैक्सन और मैडोना के गाने आराम है और आदमी अपने आप को गिना से बचा। अब सवाल ये होता है कि आखिर हम ये क्यों अपने आप को दुनिया की मौजूदा लज्जतों से महरूम करें, क्या मिल जाएगा हमें? ये जुमला बेटे का है, वो जुमला माँ का, माँ का जुमला जनाब हाजरा। जिस वक्त इब्राहिम हाजरा को लेके आए, हाजरा इतनी अहम है कि इस मजमे में मुझे कुछ ऐसे चेहरे नजर आ गए जो इस साल मेरे साथ हज पे थे, मुख्तलिफ काफिलों में थे लेकिन उनसे हमारी मुलाकात हुई। कुछ ऐसे चेहरे नजर आए जो पिछले साल थे और कुछ ऐसे चेहरे जो उससे पिछले साल। तो बहुत मुख्तसर एक बात, हाजरा उस खातून का नाम कि अल्लाह कहता है कि जब मेरे घर का तवाफ करना है तुम्हारा हज गलत, मेरे घर का तवाफ करना है तुम्हारा हज गलत, मेरे घर का तवाफ करना है, तुम्हारा उमरा गलत। गुजराती में क्या कहते हैं, चौकड़ी लगाना। तुम्हारे हज और उमरे पे चौकड़ी आकर मेरे घर का तवाफ करके आ गए। खुदा बंदा हम जा ही रहे तेरे घर के लिए, बात नहीं। मेरे घर का तवाफ ना मुकम्मल है जब तक कि हाजरा की कब्र को भी अपने तवाफ में शामिल ना करो। वो अलग मसला है कि हम सफा मरवा में दौड़ते हैं, वो तो क्या है कि पहले तवाफ किया अल्लाह के घर का, फिर गए, और अब जो बात मैं कह रहा हूं, फिर नहीं गए, उसी तवाफ के दौरान अली के सच्चा खाने को भी शामिल करना है, कब्र हाजरा को भी शामिल करना है, वरना तुम्हारा तवाफ गलत। देखिए जनाब हाजरा के कब्र और अल्लाह का घर खाने काबा, उसके बीच में एक छोटा सा रास्ता, बल्कि इतना छोटा भी नहीं। अगर आप चाहें तो खाने काबा के गिर्द इस तरह घूम सकते हैं कि कब्र हाजरा जो उस गोल दीवार में है यू शेप बाहर रह जाए। गलत है तवाफ। हाजरा की अजमत और मंजिलत का अंदाजा इससे करें कि तवाफ में अल्लाह ने जुस बना दिया तवाफ का कब्र हाजरा। हाजरा का एक जुमला सुन, एक जुमला। शौहर ने कहा फलस्तीन में रहते हैं, चलो हम यहां से चलते हैं। कोई इतराज, कोई आर्गूमेंट, कोई सवाल नहीं। अब या तो शौहर की इताअत की वजह से, या ये शौहर आम शौहर नहीं है, अल्लाह का नबी, नबी की बात जो कह दी मान ली। आ गए घोड़ा जहां से मक्के में दाखिल हुआ, वो सड़क आज भी मौजूद। लेकिन अगर मैं ये जुमला कह दूं तो ज्यादा अच्छा है कि आज ही मौजूद, फिर पता नहीं कितने जल्दी वो खत्म होने वाली। मगर आए मक्के में उस वक्त कोई नहीं, सिर्फ खाने काबा, वो भी जमीन के नीचे बुनियादें, ऊपर कुछ नहीं, खाली पड़ी है जमीन। जंगल में आके बिठाया बीवी को, जंगल में गलत का, जंगल में भी दरख्त और झाड़ और सब्जियां और झाड़ियां और सब्जा होता, कुछ नहीं था। चल चलाती धूप, सवारी रोकी जहां पे आज जमजम का कुआं, वहां रोकी, कहा हाजरा उतरो। चले गाड़ी वाला अमूमन सवारियों को पहले उतारता है, पैसेंजर को फिर उतरता। हाजरा उतर गए, गोद में इस्माइल है। शौहर ने सवारी को यू टर्न दिया, यानी घोड़े का रुख बदला, जहां से आए वापस। घबरा के कहा कि मुझे यहां छोड़ के कैसे क्यों जा रहे हो, न खाना है, न पानी है, न मकान है, न सब्जा है। ऐसा भी नहीं कि शौहर चला जाएगा, ये फलदार दरख्त है फल खा लेना, ये पानी की नहर है दो चुल्लू पानी पी लेना, कुछ नहीं है। जंगल, जंगल नहीं सहरा, रेत, चथियल मैदान, जला देने वाली, झुलसा देने वाली पहाड़ियां। शौहर बीवी घबरा गई, उसका हक है घबराना, और उसका हक है कि शौहर से पूछे, तुम मेरे निगेबान, तुम मेरे प्रोटेक्टर, तुम्हारे जिम्मे है मेरी हिफाजत, या मुझे छोड़ के जा रहे। शौहर ने सिर्फ एक जुमला बे अम्रिल्ला, अल्लाह ने ऑर्डर दिया इसलिए मैं जा रहा हूं। हाजरा के होंठ बंद हुए, अब न खाने का सवाल, न पानी का सवाल, न जानवरों से तो आपूस का सवाल, न इस धूप में जलने का सवाल, न मकान का सवाल। हुक्मे खुदा अगर है तो आगे कुछ नहीं बोलना है। जब इतना जज्बा आ जाए तो औरत हाजरा बनती है, और तवाफ में अल्लाह कहता है मेरे घर के साथ इसकी कब्र को भी शामिल करो। और यही वक्त कम है और मुझे मंजिल मसाइब पे आना है, आज की बात पूरी हो जाए। यही माँ ऐसी हो तो बेटा ऐसा होता। घर के मैं हमेशा एक जुमला कहता हूं, नबी अपनी मां की तरबियत की वजह से नबी नहीं बनता, वैसे ही नबी। इमाम अपनी मां की तरबियत की वजह से इमाम नहीं बनता, वो बाइबर्त इमाम होता। लेकिन जाहिरी एतबार से मां ऐसी है तो बेटा कैसा बना। या अबते फलमा तो उमर, बाबा आपने मुझसे पूछा मैं क्या करूं, पूछने की क्या जरूरत, जो अल्लाह ने हुक्म दे दिया आप उसके ऊपर अमल करें। हुक्म खुदा में बीवी से नहीं पूछा जाएगा। हज पे लोग आते हैं, एप्लीकेशन भरते हैं। मैंने कहा कि भाई मैं आपको हज करवाने की जिम्मेदारी ले रहा हूं, तकलीफ किसकी कर दे। ठहर जाइए, बीवी से पूछ के आता हूं। या अबते फल मा तो उमर, हुक्मे खुदा आए बाबा वो अमल कीजिए जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया। सताइए तो नहीं, इंशाल्लाह मिनस साबिरीन। सवाल ये हजरत अल्लामा रशीद तुराबी आल अल्लाह मुकामहू की मजलिस, पूरा तफसील के साथ मैंने बहुत मुख्तसर किया। अब अंदाज में हर एक के फर्क है, मेरा अंदाज ये लठमार अंदाज था, इसमें मिक्स गैदरिंग भी आ गई, इसमें हिजाब भी आ गया, इसके अंदर बर्थडे पार्टी भी आ गई, और आप भूल गए कि बात चली कहां से थी। कहा सवाल, अल्लाह ने इब्राहिम को हुक्म दिया, इब्राहिम को हुक्म दिया, इब्राहिम को अमल करना चाहिए, बेटे से क्यों पूछा जा रहा। एक तरह से तो ये वही बात हो गई जिसका भी मैं मजाक उड़ा रहा था। अल्लाह ने कहीं भी वही में, नबी का ख्वाब भी वही, ये नहीं कहा था कि बेटे से पूछना या मशवरा करना। तुम्हें हुक्म दिया जाओ ये काम करो, हुक्म आ गया, ऑर्डर इज ऑर्डर, जाओ जाके इस्माइल को जबा करो। पूछा क्यों इस्माइल से, पूछा क्यों, जरूरत क्या है पूछने की। तो मुख्तलिफ हदीसों की रोशनी में जो जवाब दिया, ये मेरे उस सवाल का जवाब, हुसैन के जिहाद और इमाम जमाना के जिहाद का फर्क जवाब, उस मैं अल्लामा रशीद तुरावी के मजलिस का रेफरेंस दे रहा हूं, का जवाब दे रहा हूं। जवाब ये कि अगर इब्राहिम हुक्म खुदा पे अमल करते हुए इस्माइल को ले जाके जमीन पे लेटा के और गले पे छुरी फेर देते तो सारा जो सवाब खाली इब्राहिम को मिलता। इस्माइल से पूछा, उसे पता चल जाए, वो हाँ कह दे, ताकि जितना अजर इब्राहिम को मिल रहा है उतना ही अजर सवाब इस्माइल को भी मिल जाए। जब तक के सामने वाले को मालूम ना हो, वो अगर ला इल्मी में किसी जिहाद में फंस गया, क्रॉस फायरिंग हो रही है, ला इल्मी में गुजरा मारा गया, ना वो मुजाहिद है ना वो शहीद। अजर व सवाब बनेगा जब वो दिल की ख्वाहिश के साथ आए। तो इब्राहिम ने कहा कि ये अजर व सवाब मेरे लिए क्यों महदूद रहे, हुक्म मुझे मिला है, सवाब में बेटे को शरीक करूं तो बेटे को भी बता दिया। यही आका हुसैन और इमाम जमाना के जिहाद का फर्क है जो कल मुकम्मल होगा। हुसैन ने कहा करबला का सारा सवाब मैं अपने अकबर तक नहीं रखना चाहता, मैं तुम्हारी औलाद को भी मुंतकिल करना चाहता, मैं तुम्हारी औरतों को भी मुंतकिल करना चाहता, इसलिए जुल्म का तारुफ कराया, खातिमा नहीं कराया, ताकि तुम अपने जमाने के जालिम का मुकाबला करो, सवाब तुम्हें भी मिले। आका हुसैन जिहाद करबला में हमें शामिल करना चाह रहे हैं, और इसकी मजीद वजाहत कल होगी, अगरचे वजाहत की जरूरत नहीं। जिहाद करबला में तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे जवान, वो भी शामिल हो जाएं। इस एतबार से जिहाद का इतना हिस्सा मैंने किया, एक हिस्सा छोड़ दिया। तुम्हें उसके खिलाफ जिहाद करके साबित करना है कि अगर 61 हिजरी के करबला में होते तो जो 1434 हिजरी के जालिम का मुकाबला कर रहा, यकीनन वो 61 हिजरी के जालिम का भी मुकाबला करता। बहुत छोटा सा एक जुमला कह दो, वैसे करीने ने सुना रसूल के दांत टूट गए, अपने सारे दांत तोड़ लिए। क्यों? कि अगर अल्लाह के रसूल उस मैदान ओहद के जिहाद में जख्मी है, मैं नहीं था ओहद जहां पर बैठा, वहीं पर मुझे इस जिहाद का सवाब लेना है। यही वजह है कि दुनिया इमाम का इंतजार करती, दुनिया इमाम का इंतजार करती। सिफीन की लड़ाई के लिए मौला अली तैयार हो चुके, पूरा लश्कर तैयार। हम लोगों को बेचैनी है, मौला चले, कहा कि नहीं मैं इंतजार कर रहा हूं अपने एक सिपाही का। दुनिया इमामत का इंतजार करती है, इमाम अली एक सिपाही का इंतजार कर रहे। और आया तो लोगों ने देखा उवैसे करनी आ रहा है, उवैसे करनी का इंतजार इमामत कर रही है, क्योंकि वो जहां बैठा था उसने देखा कि अगर मैं उहद में होता तो क्या जिहाद करता, वो जिहाद मैं यहां पर कर रहा हूं। ये मकसद है हुसैन था। मगर नतीजा तो निकल गया। तफसीर में कहीं ऐसा ना हो कि आप धोखा खा जाए कि हां भाई नतीजा ये निकला कि जहां पर भी हो अपने जमाने के जालिम का मुकाबला करो तो जिहाद करबला में शरीक हो। और फौरन जहन में ख्याल आ जाए जालिम का मुकाबला कैसे किया जाता। जो चीजें आपके जहन में आएंगी खाली वही तरीका नहीं। करबला के जिहाद का वारिस सज्जाद है ना, करबला के जिहाद की शरीका जैनब है ना, दो जुमले, वारिस सज्जाद, शरीकतुल हुसैन जैनब। खाली हुसैन ने जालिम का मुकाबला नहीं किया, सज्जाद ने भी किया। हुसैन का जिहाद तीर और तलवार थे, सज्जाद का जिहाद सब्र और मजलूमियत। तो मेरी मजलिस से आधा नतीजा सुनकर बाकी आधा फैसला खुद ना कीजिए कि जी मसल मौलाना ने कहा है कि करबला के जिहाद में शामिल होने के लिए जुल्म का मुकाबला करो, ये तो नहीं कहा ना। ये तरीका वो इख्तियार करो जो खास 10 मुहर्रम का था, देखना पड़ेगा। 10 मुहर्रम के बाद वाले भी तो आए ना, और बहुत आए, बहुत आए। यानी जब ये काफिला करबला से चला कूफा गया, कूफे से चला शाम गया, बाजारों में गया, दरबारों में गया, बस्तियों से गुजरा, करिया करिया, बस्ती बस्ती, कूचा कूचा, तो क्या पूरा ये सफर खाली रहा? एक मुहिब एलिमेंट भी कहीं नहीं था, थे, आते थे, कहते थे मौला इजाजत दीजिए, हम करबला में नहीं पहुंचे, हमें इत्तला ही नहीं मिली, लेकिन मौजूद हैं, तलवार भी है, मरने को तैयार भी है। हाँ, इतना हमको पता है, अपनी मर्जी से आए भी नहीं, अपनी मर्जी से जा भी नहीं सकते, ये मजलिस का शुरू का जुमला था और ये आखिर में आ गया। इतना पता है कि इबादत इस्लाम बताता है तो तरीका भी इस्लाम बताता है। अब हम इजाजत है आपकी तरफ से, आका सज्जाद का एक ही जवाब था कि नहीं, अब तलवार चलाने की इजाजत नहीं। जिहाद करबला में सज्जाद है कि नहीं? क्या करबला के मुजाहिदीन में सज्जाद का नाम नहीं है? कौन निकालेगा? क्या जिहाद करबला में ज़ैनब है कि नहीं, जिसका तो लकब ही है शरीकतुल हुसैन, पूरे जिहाद में हुसैन के साथ शरीक? मगर एक तरीका वो था, एक तरीका ये भी, वो भी जुल्म का मुकाबला, ये भी जुल्म का मुकाबला। ये जहन में रख के मेरी मजलिस के पैगाम को जो 2 मिनट पहले मुकम्मल हो चुका है, मकाम अमल में लाइए। कहीं कहीं मिशन वही होता है मगर तरीका अलग होता है। करबला में अगर मासूम अली असगर के सूखी जबान और सूखे होठों के हथियार ने यजीदियों को रुलाया, तो शाम में नन्नी सकीना के गिरी और मातम ने शामियों को हिला दिया। वो भी जिहाद, ये भी जिहाद, चूंकि आज की रात शबे जुमा, यानी कल जुमे का दिन, तो मसाए बहुत तेजी से बजाय कूफे के शाम के पढ़ रहा हूं, फिर आ जाऊंगा कल परसों कूफे के मसाए। करबला में जुल्म का मुकाबला हुसैन ने तलवार लेके किया, सज्जाद ने जुल्म का मुकाबला जुमा नमाज के मिंबर के खुतबे पे हथकड़ी और बेड़ी पहन के किया। ये भी जिहाद, वो भी जिहाद, पैगाम दोनों का एक। जुल्म का मुकाबला करना है मौका महल के तहत, जुमे की नमाज कल आप पढ़ेंगे, एक जुमे की नमाज सज्जाद ने भी पढ़ी। पढ़ी तो नहीं इसलिए कि इमाम गैर मासूम के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकता, मगर यजीद ने बुलवाया कम अज कम नमाज जुमा में। दमिश्क की मस्जिद जुमे का दिन है, मजमा इतना ज्यादा कि यजीद के दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि आज सज्जाद को बुला के अपनी ताकत दिखाऊं कि मैं हूं कौन। चुनाचे सज्जाद को बुलाया ताकत दिखाने के लिए, कैसे? 2 चीजों से। नंबर 1 कि देख सज्जाद, ये मस्जिद में इतने लोग मेरे मुती और फरमा बरदार हैं कि मैं नमाजी की भी हथकड़ी नहीं खोलूंगा तो कोई सवाल नहीं करेगा। वरना जरा सा भी अगर इंसानियत होती, लोग कहते कि यजीद बेशक तेरा कैदी, मगर कम अज कम नमाज में अल्लाह अकबर कहेगा इस वक्त वो हथकड़ी खोल दे, सिजदे में जाएगा कम अज कम इस वक्त तो बेड़ी खोल दे, मगर इतना यकीन है यजीद को अपने हामियों पर। और दूसरा जो रही सही कसर, वो मेरा खतीब पूरी कर देगा। सज्जाद को बुलाया गया, किस शान से इमामत आई होगी बताने की जरूरत भी नहीं, और एक बार मिंबर के करीब बिठाया गया, खतीब को जो कहना था कहा, कल जुमे का दिन नमाज जुमे का खुतबा, जिसका एक ही जुमला बार बार दोहरा रहा है खतीब, आज ईद का दिन है, खुदा ने हमारे अमीर को फतह अता की। एक बार मेरे मौला ने वहीं से कहा कि खतीब तूने गलत कहा, एक बंदे को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज किया और दुनिया को खरीदने के लिए आखिरत को बेच दिया, वह बेसमझ तरह कितना बुरा सौदा किया। खड़े हो गए, कहा यजीद तेरे आदमी को जो कहना था कह दिया, अब मुझे भी इजाजत है कुछ कहने की? क्या सज्जाद मजमे के यजीद के मोहताज? वही मजलिस का पैगाम नहीं, जिहाद में मजमे को मिलाना चाहते। चुनाचे अभी यजीद सोच रहा है क्या जवाब, और मजमा कहने लगा कि हम भी सुनना चाहते हैं ये कैदी क्या कहना चाहता। भाई यही मजमे को बेदार करके शरीक करना, ये है जिहाद सज्जाद। یہاں پہ میں اپنے موضوع سے ملا سیرت سجاد چار روزہ مجالس میں. ایک بار مجمع نے کہا, اب یزید کے جواب کا انتظار نہیں کیا, آقا منبر پہ گئے اور پھر وہ خطبہ دیا کہ صاحبان ایمان تو کیا گریا کریں گے جو یزیدیوں نے گریا کیا. انا ابن محمد المصطفیٰ, انا ابن خدیجہ الکبریٰ, انا ابن علی المرتضیٰ, انا ابن بنت نبی, انا وارث مکہ و زمزم, انا صاحبہ صفا و مروہ. مجھے پہچانو میں کون ہوں, میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا, میں خدیجہ طاہرہ کا فرزند, میں علی مرتضیٰ کا لخت جگر, میں تمہارے نبی کی بیٹی کا وارث, زندہ وارث, میں مکے کا مالک. مجمع یزیدی مجمع, شام کا مجمع تڑپ تڑپ کے رونے لگا. ایک بار گھبرا گیا یزید, اے مؤذن اقتا کلام علی ابن الحسین, علی ابن الحسین کے کلام کو قطع کر اذان دی. مولا نے اذان کو بھی تبلیغ کا ذریعہ بنایا, اشہد ان محمد رسول اللہ. اے یزید یہ تیرے جد کا تذکرہ ہے یا میرے جد کا تذکرہ ہے؟ سارے مجمع کے سامنے اپنا تعارف مکمل کیا. لیکن اب مجھے آپ سے زیادہ بات نہیں کرنا, دو جملے. ایک میں اپنے لیے پڑھتا ہوں اور ایک آقا سجاد سے سوال کرتا ہوں. میں سوچتا ہوں کہ میں تو ممبر پہ جاتا ہوں, مجھے پتا ممبر کے خطیب کو ہاتھوں کی آزادی چاہیے اشارے کرنا ہوتے, گلے کی آزادی چاہیے گردن کو گھمانا ہوتی ہے. اللہ, شام کی مسجد کا خطیب ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہے, گلے میں توقع گرا بار ہے اور ایسا خطبہ. اور مولا سجاد میں آپ کے مسائل پڑھنے آیا ہوں, چار دن آپ کے مسائل پڑھوں گا, میں گستاخی نہیں کر رہا, لیکن مولا بس ایک سوال کرنے کو دل چاہتا ہے. آپ کے کلام نے یہ سیدھیوں کو رلوا دیا, یہ کلام کاٹا گیا مگر اذان سے کاٹا گیا. ہائے آپ کا بابا, جب اصغر کو لے کے میدان کربلا میں آیا اور ہر ملا سے کہا گیا اختا کلام الحسین, وہ اذان نہ تھی, تین بھال کا تیر چلا اصغر کا گلا ایک سرے سے دوسرے سرے تک چھن گیا. اللہ الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. پروردگارا میرے مظلوم آقا سجاد کے اس امتحان کا واسطہ, آج کی مجلس میں جو مومنین و مومنات مصروف گریہ ہیں, ان کو اور ان کی اولادوں کو اور ان کے گھروں کو اور ان کی روزی کے ذرائع کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما, ان کے آنسوؤں کے طفیل ان کی ساری حاجتوں کو پورا فرما. آج کی شب جمعہ ہمارے تمام مرحومین, خاص طور پہ جو آج کے مجلس میں آئے ہوئے ہیں, ان کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما, بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما, جو روزگار کی کسی پریشانی میں مبتلا ہے, حسین کے بچوں سکینہ اور اصغر کی بھوک اور پیاس کا واسطہ, ان کی اس پریشانی کو دور فرما, اور سارے عالم اسلام کی پریشانیوں کے خاتمے کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ماتم حسین.
یا حسین یا حسین یا حسین, میں بنت علی ہوں اے شام کے لوگوں, میں بنت علی ہوں اے شام کے لوگوں, میں بنت علی ہوں, میں وارث تطہیر ہوں, میں وارث تطہیر ہوں, ناموں سے نبی ہوں, اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں, اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں. بازار سے دربار میں لے آئے ہو مجھ کو, چاہوں تو جلا سکتی ہوں خطبوں سے میں تم کو, صابر کی بہن ہوں جو میں, صابر کی بہن ہوں جو میں, خاموش کھڑی ہوں, اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں, اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں. شام کے لوگوں زندہ تھا تو ڈر ڈر کے ہمیں شاہی لڑے ہو، اب سر ہے تو ہونٹوں پہ چھری مار رہے ہو، تم کتنے بہادر ہو میں تم کتنے بہادر ہو میں یہ دیکھ رہی ہوں، اے شام کے لوگوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، اے شام کے لوگوں زنجیروں میں جکرا جو یہ بیمار کھڑا ہے، سجدہ اسے کعبے کی فصیلوں نے کیا ہے، منصب میں بڑا وہ ہے میں منصب میں بڑا وہ ہے میں رشتے میں بڑی ہوں، اے شام کے لوگوں شام کے لوگوں افسوس کنیزی میں اسے مانگ رہے ہو، تم جس کے غلاموں کی غلامی میں رہے ہو، یہ ظلم نہ ہوگا کبھی یہ ظلم کبھی، میں زندہ ابھی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، میں وارث تطہیر ہوں میں وارث ہوں، ناموں سے نبی ہوں،